أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آموزش فلسفہ میں ہماری بحث ساتویں درس میں چل رہی تھی اور اس کی آخری بحث رہ گئی ہے کہ جو آج ہم بیان کریں گے. آج کے درس میں جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ ہدف فلسفہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ فلسفے کا ہدف کیا ہے. پہلے مقدمے کے طور پر ہدف کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں کہ ہدف کبھی نزدیک ہوتا ہے اور کبھی بعید ہوتا ہے, یعنی نزدیک کا ہدف اور دور کا ہدف. نزدیکی ہدف اس ہدف کو کہتے ہیں کہ جو عمل کے بغیر کسی واسطے سے حاصل ہو جائے, یعنی عمل انجام دے اور ہدف حاصل ہو جائے, کسی قسم کا کوئی واسطہ بیچ میں موجود نہ ہو, اس کو کہتے ہیں ہدف قریب, ہدف نزدیک. ہدف بعید کیا ہے؟ ہدف بعید اس ہدف کو کہتے ہیں کہ جو واسطے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, یعنی آپ عمل انجام دیتے ہیں, اس عمل کا ایک ہدف قریب ہوگا, اس ہدف قریب کے بعد ایک اور ہدف جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہوگا, اس کو کہیں گے ہدف بعید, یعنی جس میں واسطہ آ جائے. بس یہ ذہن میں رہے کہ ہدف بعید یہاں پر یہ نہیں کہ بہت دور ہو, بہت زیادہ واسطے ہوں, نہ, اگر ایک واسطے کا بھی فاصلہ آ گیا تو اس کو معمولاً ہدف بعید کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے قریب کے مقابلے میں. فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسان کی حقیقت کو دیکھیں تو انسان کے اندر ایک چیز اس کی ذات کے اندر تقریباً نظر آتی ہے, وہ ہے جستجو کی حس. کہ انسان, آپ کو اس روئے زمین پر کوئی نہیں ملے گا کہ جو جستجو کرنے کی حس نہ رکھتا ہو. یہ الگ بات ہے کہ جستجو کرنے کا دائرہ کار اس کا کتنا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن جستجو اس کے اندر ضرور ہوگی. حتیٰ جو بچہ آہستہ آہستہ رشد کر رہا ہے, آپ دیکھیں اس کے اندر بھی جستجو کی رشد پائی جاتی حس پائی جاتی ہے, وہ کچھ نہ کچھ جاننا چاہتا ہے. جو چیزیں اس کے لیے مجہول ہیں, اس کو معلوم نہیں ہیں, وہ اس کو علم میں بدلنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بچہ سب سے زیادہ سوال کرتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی اس کے لیے معلومات آنی ہیں, بہت ساری چیزوں سے جاہل ہے, وہ سیکھ رہا ہے ابھی. تو اس کے سوال کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک حس موجود ہے, ایک غریزہ موجود ہے اس کے اندر, کہ جو حقیقت کی تلاش کا غریزہ ہے, جستجو کا جو ہے وہ غریزہ ہے, وہ اس سے سوال کرواتا ہے. تو فرماتے ہیں اگر ہم اس غریزے کو مد نظر رکھیں, اس خصوصیت کو مد نظر رکھیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے, تو ہر علم کا ہدف قریب اسی علم کے مسائل کو جاننا ہے. کیونکہ آپ ایک علم کو پڑھتے ہیں, اس کے اندر مختلف مسائل آپ حل کرتے ہیں جا کر, اس کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہوتا ہے, تو وہ علم, ان مسائل کو جاننا, یہ جاننا ہدف قریب ہے. مثلا آپ اگر فزکس پڑھ رہے ہیں تو فزکس میں آپ مادے اور انرجی کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور اس کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں, تو तो इल्मे फिजिक्स का जो हदफ करीब है वो क्या है कि आप मादे के मुतअल्लिक जो मसाइल हैं उससे आशना हो जाएं, वो आशनाई हासिल कर लें, ये एक हदफ करीब है। क्यों है ये हदफ करीब? इसलिए चूंकि इंसान मजहूलात को मालूमात में बदलना चाहता है और मैटर के बारे में जो भी जो मसाइल हैं वो उसके लिए मजहूल है, वो उसको मालूम में बदलना चाहता है, ये उसका हदफ करीब हो गया। अब इसके बाद जो वो अहदाफ हासिल करेगा उसको फिर हदफ बईद के अंदर लेकर आएंगे। मतलब फिजिक्स के जरिए आप क्या करते हैं, मसाइल को जानते हैं, मसाइल को जानने के बाद फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो आप उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में उन मसाइल से इस्तेफादा कर रहे हैं, ये अब हदफ बईद हो जाएगा। क्यों? इस वजह से चूंकि वास्ते के साथ ये हदफ आ रहा है। पहला जो डायरेक्ट हदफ है वो है खुद उन मसाइल को जानना, जब वो मसाइल जान लिए फिर नौबत आती है कि आप उन मसाइल को किस तरीके से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जनाब आयतुल्लाह मिसबाह फरमाते हैं कि अगर हम साइंस को देखें और खुसूसन जो नेचुरल साइंसेज हैं हमारे पास जिनको उलूमे तबीई कहते हैं, ये एक वास्ते के साथ इंसान की जिंदगी में तासीर रखते हैं। जैसे अभी मैंने बयान किया कि आप मुख्तलिफ साइंस के उलूम पढ़ते हैं, आप उन मसाइल से आगाह हो जाते हैं, उन मसाइल से आपको आशनाई हासिल हो जाती है। जब आशनाई हासिल हो जाती है अब उन मसाइल की बुनियाद पर आप अपनी जिंदगी के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आप देखें कि मसलन ये रोशनी के जिसके अंदर जिससे इस्तेफादा करके हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? साइंसी उलूम की बदौलत हुआ है। तो ये जो हदफ हासिल किया हमने रोशनी का और इससे अपनी जिंदगी में इस्तेफादा कर रहे हैं, ये साइंस का हदफ बईद है। क्यों? एक वास्ते के साथ इंसान की जिंदगी में तासीर कर रहा है। वो हदफ, एक वो वास्ता क्या है? वो वास्ता है कि मसाइल को जानना और जानने के बाद अपनी जिंदगी के अंदर उसको एमाल कर देना। लेकिन फरमाते हैं कि जो रियाजी के उलूम हैं, उलूम रियाजी हैं, जो ये दो वास्ते के साथ इंसान की जिंदगी में तासीर रखते हैं। कैसे? कि आप उलूम रियाजी का जो हदफ करीब है वो है कि आप रियाजी के मसाइल से आशनाई हासिल कर लें। अब जब मुझे रियाजी के मसाइल से आशनाई हासिल हो गई है, मैं इन मसाइल की बुनियाद पर नेचुरल साइंसेज के अंदर जाकर उनको इस्तेफादा करता हूं। बस एक वास्ते के साथ इल्मे रियाजी कार आमद साबित होता है। किसके लिए? उलूमे तबीई के लिए, साइंसेज के लिए। दुरुस्त है? और जब वो साइंस को आप जो है वो रियाजी की बुनियाद पर साइंस के अंदर बास चीजों को इजरा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रियाजी के कवायद के तहत उलूम नेचुरल साइंसेज के अंदर कुछ चीजों को मुनज्जम कर देते हैं, या जो भी तरीकाकार है आप उसको अगर मद्देनजर रखें कि उलूम के माहिरीन जानते हैं कि किस तरीके से रियाजी जो है वो जाकर नेचुरल साइंसेज के अंदर तासीर दिखाती है, और फिर ये नेचुरल साइंसेज जो हैं फिर हमारी जिंदगी के अंदर तासीर दिखाती हैं। तो इस तरीके से उलूम रियाजी जो हैं दो वास्ते के साथ इंसान की जिंदगी में तासीर दिखाती हैं, चाहे वो इंसान की तबीई जिंदगी हो, चाहे वो इंसान की हैवानी यानी हयात और जिंदगी के साथ मरबूत हो, वो मद्देनजर हो, उसके अंदर भी ये तासीर दिखाती है। खुद जब ये बयान हो गया तो आप फरमाते हैं कि अगर इंसान नेचुरल साइंसेज को देखता के अंदर काम करता है, या कोई भी साइंस है उसके अंदर काम कर रहा हो, और उससे हदफ हासिल कर रहा हो, हदफ तक पहुंच रहा हो, तो अगर यही साइंसदान खुदावंद मुतआल का एतिकाद रखता हो, खुदावंद मुतआल की रहमत का मोतकिद हो, खुदावंद मुतआल की कुदरत व अजमत का इकरार रखता हो, तो क्या होगा? ये इंसान इसी साइंस के जरिए खुदा की अजमत का इकरार करेगा, खुदा की कुदरत का इकरार करेगा। यानी अगर आप यूं कहें कि इंसान अगर कल्बी तौर पर और इरफानी तौर पर भी क्या हो, मुंसलिक हो अपने यानी अकीदे के अंदर, इसकी तासीर को कबूल करता हो, तो ये इंसान फिर क्या होता है, जैसे जैसे साइंस के जरिए ये मुख्तलिफ असरार को कशफ कर रहा हो, तो क्या होता है, ये अल्लाह की कुदरत का ईमान उसका बढ़ जाता है, उसकी अजमत का पर उसकी अजमत जो है, उसकी खुदा की जो है वो उसकी निगाह में जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, खुदा के हिकमत और रहमत उसके अंदर ज्यादा हो जाती है। अब ये एक अलग हदफ है। असल में आयतुल्लाह मिसबाह हाफ़ज़हुल्लाह यहां पर क्या कर रहे हैं, आपको जैसा कि इनकी आदत है, मैंने आपको बताया कि जनाबे आयतुल्लाह जो है, आयतुल्लाह मिसबाह जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ उलूम का सहारा लेते हैं, उनके फवाइद व नताइज को गिनवाते हैं और फिर जाकर उसको टच देते हैं फलसफे के साथ। क्यों? ताकि इसकी तासीर को तो इंसान देख रहा होता है, साइंस की तासीर को देख रहा होता है और दूसरी चीजों की तासीर को महसूस कर रहा होता है। कमी जिस चीज की होती है वो ये कि फलसफे की तासीरात को अपने महसूसात के साथ नहीं दर कर पा रहा होता, तो इस वजह से वो मुतवज्जे नहीं होता कि फलसफे की क्या अहमियत है, फलसफे कितना बड़ा हदफ रखता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुकदमा चीनी कर रहे हैं इस बात को साबित करने के लिए कि फलसफे का हदफ क्या है। दुरुस्त है? तो लिहाजा स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ मिसालें देकर इंसान को जो है वो करीब कर रहे हैं। अब चूंकि ये किताब लिखी गई है हर किस्म के फर्द के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो कोई भी मैदान का हो, चाहे वो मदरसे का हो, किसी का भी हो, उसको ये फलसफा जो है वो समझ में आ जाए, इस वजह से ये मुख्तलिफ उलूम का भी सहारा लेते हैं। तो फरमाते हैं कि अब हमारे पास देखें, उलूम फलसफी को अगर हम मद्देनजर रखें और उलूम तबीई को भी मद्देनजर रखें, नेचुरल साइंसेस को भी अगर हम मद्देनजर रखें, तो हमें एक चीज का एहसास होता है, वो ये कि उलूम फलसफी का जो राबता है इंसान के मानवी बोध के साथ वो ज्यादा है नेचुरल साइंस की निस्बत। यानी अगर इंसान उलूम फलसफी को पढ़ रहा हो, उसको हासिल कर रहा हो, तो ये इंसान जल्दी इंसान के मानवी बोध के साथ मरबूत हो जाएगा, उसकी अहमियत का कायल होगा, उसके मसाइल को सीखेगा, उसकी बुनियाद पर फिर अपनी जिंदगी को आगे लेकर बढ़ेगा। लेकिन जो नेचुरल साइंस है वो इस तरीके से नहीं है, उसमें थोड़ी सी तवज्जो ज्यादा करनी पड़ती है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि नेचुरल साइंस के अंदर जो तहकीक की रविश है वो क्या है, तजर्बा, हिस। और इंसान जब इस तजर्बा और हिस के जरिए मुख्तलिफ असरार को कश्फ करता है, क्या करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी के अंदर ही गुम हो जाता है। और असरार फाश करते करते, कश्फ करते करते खुद उस जात का भी इनकार कर देता है कि जिसने इस कायनात को खल किया है, जिसने इस इंसान इस कायनात के अंदर ये असरार रखे हैं कि जिसको ये कश्फ कर रहा होता है। तो उलूम तबीई का राबिता अगरचे बन जाता है इंसान के मानवी बोध के साथ, लेकिन फलसफी उलूम तेजी के साथ इंसान को मुतवज्जे कर देते हैं, उसके मानवीय बोध के साथ मुर्तबित हो जाते हैं वो आकर। और फरमाते हैं कि चूंकि उलूम फलसफी क्या है, आप मिसाल दे रहे हैं किस तरीके से उलूम फलसफी इंसान के मानवी बोध के साथ ज्यादा राबता रखते हैं नेचुरल साइंस की निस्बत, उसकी मिसाल दे रहे हैं। फरमाते हैं कि उलूम फलसफी में से एक इल्म खुदाशनासी था, खुदाशनासी के अंदर जो है ये तो बहुत ही ज्यादा वाज़े है कि यहां पर तो इंसान अपने मानवी बोध की तरफ, अपने मानवी जो जंबे की तरफ है वो क्या हो जाता है, मुतवज्जे हो जाता है। चूंकि जब जब खुदा के बारे में बात हो रही होती है तो खुदा के मुकाबले में इसकी क्या हैसियत है, मखलूक है खुदा है, तो लिहाजा उस इर्तबात में ये कवि जो है वो तवज्जो हो जाती है इसकी। इसके बाद फिर क्या होता है, अगर आप इल्मुन्नफ्स फलसफी को पढ़ रहे हों, उसके अंदर तहकीक कर रहे हों, उसके अंदर जस्तजू कर रहे हों, तो यहां भी क्या इंसान के मानवी बहुत उजागर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इल्मुन्नफ्स में होती ही बहस यही है कि इंसान आया फकत मादी हकीकत रखता है या मादी हकीकत के साथ साथ क्या है रूहानी जो है हकीकत भी रखता है, जिसको हम रूह कहते हैं, जिसको हम नफ्स कहते हैं और उसको मुजर्रद मानते हैं, तो लिहाजा ये मुतवज्जे कर देता है। इसी तरीके से फलसफा अखलाक, फलसफा अखलाक के अंदर भी चूंकि अखलाक जो है वो क्या है, इंसान की नफ्सियाती जो कैफियात हैं, हालात हैं, जो उसकी सिफात हैं, उसके बारे में बहस करता है, तो लिहाजा इस एतबार से भी वो क्या है मुतवज्जे हो जाता है कि इंसान अपना मानवी जंबा जो है उसको नहीं भूलता। फरमाते हैं कि फलसफा इलाही के अंदर हम खुदा से आशना होते हैं, खुदा के सिफात जमाल और जलाल से आगाह होते हैं, और इसके ज़रिए फिर हम क्या होते हैं, खुदा के इल्म और कुदरत और उसकी जो जमाल है बेनिहायत उससे इर्तिबात बरकरार कर लेते हैं और उसके मोतक़िद हो जाते हैं। इल्म नफ्स फलसफी में क्या होता है कि फ़िलासफ़ी ऑफ साइकोलॉजी जो है उसके अंदर हम रूह की शनाख्त हासिल करते हैं, रूह की जो खसूस सिफात हैं उससे आशनाई हासिल करते हैं, उसकी जो सिफात खसूसियात हैं उसको जानते हैं, और हमें जो है वो इंसान की हकीकत क्या है उससे आगाही नसीब हो जाती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आकर बयान करते हैं कि इसको आप मुताला फ़लसफ़ा अखलाक में हमें क्या चीज़ मिलती है, ये चीज़ मिलती है कि रूह और दिल को हम किस तरीके से आरास्ता करें, उसको मुख्तलिफ सिफात के साथ सआदत अबदी को किस तरीके से कस्ब करें, कमाल नहाई तक हम कैसे पहुँचें, ये सारी बहसें जो है फ़लसफ़ा अखलाक में होती हैं। खूब यहाँ तक तो मुख्तलिफ मिसालें इन्होंने दे दी, इस तरीके से आकर इंसान मुख्तलिफ उलूम से मुख्तलिफ अहदाफ को हासिल करता है। अब यहाँ से आकर ये बयान करते हैं कि ये तमाम अहदाफ आपको उस वक्त नसीब होंगे कि जब आप मारिफत शनासी और हस्ती शनासी के मसाइल को हल करेंगे। मारिफत शनासी के अंदर हम इल्म के बारे में बहस करते हैं कि जो अनकरीब हम शुरू करेंगे, और हस्ती शनासी के अंदर हम वजूद के बारे में बहस करते हैं कि जिसके बारे में तफसील से बात भी हो चुकी है कि इसके अंदर वजूद के कुल्ली अहकाम को बयान किया जाता है कि जो किसी भी मौजूद के साथ खास नहीं है, सब पर लागू होते हैं। तो जब तक आप उनसे आशनाई हासिल नहीं करेंगे आप बाकी उलूम की तो नौबत ही नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी इल्म में अगर किसी भी हदफ तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका रास्ता क्या है कि आपको पहले फलसफी मसाइल को हल करना पड़ेगा। जब तक वो हल नहीं होगा आप सही नतीजे पर जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब यहां से बाज़ इबारतें हम पढ़ लेते हैं, पिछली पढ़ने की जरूरत नहीं है। फरमाते हैं कि बस फलसफे उला कली दे गंजहा ये शाइगान व पायान न पजीरी अस्त के खुशबख्ती व बहरामंदी जावेदानी रा नवीद मिदाहत। के फलसफे उला, ये जहन में रहे कि हमारी जब भी फलसफे से मुराद है वो फलसफे उला है। फलसफे उला जो है वो क्या है, खजाने की क्या है, चाबी है, और ये क्या है, खत्म ना होने वाला खजाना है, और इंसान खुशबख्ती और अबदी जो बहरामंदी हासिल होती है वो इसकी नबी देता है ये फलसफा। व रीशाए पुर बरकत शजराए तैयबे अस्त के अनवा ए फजाइल अकली व रूही व कमालात बिखरान मानवी व इलाहिरा बिबार मियावरद, कि ये उस शजरा तैयबा का की जड़ है कि जो क्या शजरा तैयबा क्या करता है कि उसमें क्या होता है, फजाइल अखलाकी हैं, रूही फजाइल हैं, मानवी व इलाही कमालात हैं, बेकरां जो हैं वो कमालात कब हासिल होते हैं, वो इस जड़ों की वजह से कि जो शजरा तैयबा की हैं, यानी बाकी जो हैं वो शजरा तैयबा हैं कि बहुत सारे अनवा जो फजाइल हैं, बहुत सारे कमालात हैं, वो कमालात कब हासिल होंगे कि जब ये जड़ होगी, और वो जड़ ये फलसफा उला है। वह बुजुर्ग तरीन नक्शरा दर फराहम करदन जमीन तखामुल व तआली इंसान एफा नमायत, के फलसफा उला इंसान के लिए जो बेहतरीन किरदार अदा करता है वो ये है कि इंसान के तकामुल के जमीने को फराहम करता है, क्योंकि इंसान जो है वो तकामुल चाहता है। तो लिहाजा इस तकामुल के अंदर इंसान के फलसफा जो है वो सबसे बुनियादी तरीन किरदार अदा करता है। ये पहला हदफ है फलसफे का, कि फलसफा अगर इंसान पढ़ ले तब जाकर इंसान जो है बाकी उलूम के जरिए अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब होगा। बस फलसफा उम्मुल उलूम इसी वजह से है कि बहुत सारे मसाइल बाकी उलूम के जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बस इस एतबार से ये फलसफे की अहमियत और बरतरी जो है वो वाजे हो जाती है। दूसरा जो हदफ यहां पर बयान करते हैं वो ये है कि फलसफा जो है वो जो मादी मकतब हैं फलसफे के अंदर और इलाहादी मकतब पाए जाते हैं उनको रद्द करने में मदद देता है। मसलन अभी आगे चल के जब हम जाएंगे तो बहुत सारे मकातब फिक्र पढ़ने को मिलेंगे, और तारीख के अंदर हम पढ़ भी चुके हैं, तारीख फलसफा की जब हमारी बहस चल रही थी तो बहुत सारे हमने मकातब फलसफी को उसमें देखा, और उनमें से बाज मकातब जो है वो इलाहाद की तरफ चले गए और बाज मकातिब जो है वो फकत हिस गिरा रह गए। अब उन्होंने आकर क्या है अपने मबानी के तहत बहुत सारे शुबहात बहुत सारे एतराजात को उठाना शुरू कर दिया, तो अब फलसफे उला जो इंसान सही तरीके से पढ़ा हुआ हो तो वो उन शुबहात के जवाब दे सकता है, कि जो इंसान इलाहादी फिक्र रख कर सवाल उठा रहा है उसका जवाब कौन सा इल्म देता है, फलसफे उला, चूंकि बुनियाद वो फराहम करता है। वो मकतबा फिक्र के जो मादियात पर फकत इन्हिसार करता है, उसकी फिक्र फकत मादे के अंदर मुनहसिर है, उसकी बुनियाद पर जब वो कायनात की तफसीर करते हुए फिर बाज सवालात उठाता है उसका जवाब कौन सा इल्म देता है, फलसफा उला। तो लिहाजा फलसफा उला का जो एक हदफ है वो इंसान को मुजाहज करना है, इंसान को जो है वो लैस करना है, किस एतबार से कि वो जितने भी सवालात हैं उनका जवाब दे सके हक के मुकाबले में, दुरुस्त है, दिफा कर सके वो अपना। अब यहां पे मुमकिन है कि ये सवाल कोई उठाए आकर कि आप फलसफे का हदफ करार ये दे रहे हैं कि बाज जो मादी मकतब हैं उनको रद्द कर सके और इलाहादी फिक्र को रद्द कर सके, तो अगर हम कुल्ली तौर पर देखें तो ये मकतबाए फिक्र भी फलसफे के ज़ैल में आते हैं, यानी वो खुद भी तो फलसफी थे और फलसफी होने की बुनियाद पे इल्हाद का उन इल्हाद की तरफ वो चले गए। तो तो आप कैसे इसको फलसफे का हदफ करार देते हैं कि फलसफे का एक हदफ यह है कि इलाहादी मकतब को रद्द करे, और फिर क्या कहा कि उसको वसवासे शैतानी करार दिया। मुमकिन है कोई आपसे यह सवाल कर ले इस इबारत के अंदर, तो जवाब उसका यह है कि दुरुस्त है कि बाज अफराद फलसफे के जैल में आते हैं, लेकिन यह जहन में रहे कि फलसफाए उला के अंदर जो महारत रखता रहा, आपको कम ऐसे फैलसूफ मिलेंगे कि जो मुलहिद बने। और अगर वो मुलहिद बन भी गया है, दुरुस्त है कि फलसफे के जैल में आ रहा, लेकिन उसको जवाब कौन दे रहा है? इसी फलसफा उला से हम जवाब लेकर आते हैं और ये साबित करते हैं कि इस बंदे ने फलसफा उला को सही तरीके से समझा नहीं है। इसने अपने उस जो इसके अंदर कमियां रह गई थी फलसफा उला को समझने में, उन कमियों की बुनियाद पर अपने फलसफे को खड़ा किया है आकर, और मुआशरे में उसको फलसफा कहा जाने लगा है। वाइला अगर आप मियारात के मुताबिक आगे चलते हैं तो शायद वो फलसफे के जैल में भी ना आता हो। तो बहरहाल हम एक फलसफे का, फलसफा उला का एक हदफ ये करार दे सकते हैं कि हम इस फलसफा उला की बुनियाद पर जो तहाजुम होता है उसका जवाब दे सकते हैं। बस फरमाते हैं कि आखिरी एक तीन लाइनें जो है इस दर्स की उसका तर्जमा करते हैं और खुलासा है ये इसका। बिनाबर इन फलसफा इलावे बर नक्श इस्बाती व साजंदई बी नजीर, क्योंकि पहला हदफ था कि फलसफा मुस्बत किरदार रखते हुए, इस्बाती किरदार रखते हुए और तामीरी किरदार के साथ साथ, तामीरी किरदार क्या है उसका, कि इंसान के तकामुल का जमीना फराहम करता है। यह क्या था उसका तामीरी नक्श था, इस्बाती नक्श था। इसके साथ साथ दारा ये नक्श दिफाई व तहाजुमी बीदलील निजाज, इसका दूसरा जो किरदार है वो क्या है, दिफाई है, और दिफाई होने के साथ साथ तहाजुमी भी है कि हम दूसरे मकातब फिक्र के जो इनहराफ रखते हैं उनके ऊपर तहाजुम भी कर सकते हैं इसी फलसफे उला के साथ हक के दिफा के लिए। वदर गुस्तरिश फरहंग इस्लामी व वीरानी फरहंग है ये जिद्द इस्लामी फोकुल आदि मुअस्सर मिबाशद, फलसफा उला जो है वो इस्लामी फरहंग के वसअत के अंदर बहुत ज्यादा मुअस्सर है, और जो जिद्द इस्लामी फरहंगे और सकाफतें हैं उनकी वीरानी के अंदर, उनको बातिल करने के अंदर बहुत ज्यादा मुअस्सर है। और आप देख लें इस वक्त फलसफा उला का अलंबरदार मकतब इस्लाम है, आपको फलसफा उला इस वक्त गर्ब के अंदर नजर ही नहीं आएगा। वो जितने भी हैं वो फलसफा उला के बाहर वाले उलू में फलसफी में काम कर रहे हैं, लेकिन फलसफा उला के अंदर उनका काम अब तकरीबन ना होने के बराबर है। और ये फलसफा उला के जो उम्मुल उलूम है, तमाम उलूम का मर्जे है, और उसकी अहमियतें भी आपकी खिदमत में बयान की हैं और आगे चल के भी बाज मतालिब आएंगे, इतनी अहमियत होने के बावजूद जो है वो मगरब जमीन के अंदर फलसफा उला की तरफ तवज्जो नहीं है। हत्ता बाज ने तो फलसफा उला की अहमियत को कम रंग करने के दलाइल भी दिए हैं, और ये वाली बहस क्या है, हमारे अगले चैप्टर की बहस है कि 8 नंबर दर्स के अंदर जो है वो रविश तहकीक दर फलसफा के उन्वान से जब शुरू करते हैं तो यहां पर इस मतलब को बयान करते हैं कि बाज मुफक्किरीन मगरिब जमीन के उन्होंने आकर ये बात साबित करने की कोशिश की है कि इंसान को तरक्की देने वाले उलूम फकत साइंस हैं, नेचुरल साइंसेज हैं, जिनकी जो रविश है तजर्बी और इस्तिखराई है, और फलसफी उलूम ने इंसान को तरक्की नहीं दी है। रविश तअक्कुली, रविश अकली, इसने इंसान को तरक्की नहीं दी है। कि इस पर तफसील से बात जो है वो फिर अगले दर्स में करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।